नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर मुख्यालय में टहलते हुए अपना एक वीडियो साझा किया। उन्होंने ट्विटर पर 44 अरब डॉलर में खरीदने के समझौते को पूरा करने के लिए शुक्रवार की समय सीमा से दो दिन पहले बुधवार को ये वीडियो साझा किया। मस्क ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में भी बदलाव किया और अपने बायो में चीफ ट्वीट लिखा। उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर अपनी लोकेशन को भी बदलकर ट्विटर मुख्यालय कर दिया। मस्क को वीडियो में मुख्यालय के परिसर में एक सिंक ले जाते हुए देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि एक अदालत ने मस्क को ट्विटर के अधिग्रहण के समझौते को पूरा करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया। इससे पहले मस्क ने समझौते से पीछे हटने की कोशिश की थी। हालांकि मस्क और ट्विटर ने समझौते के पूरा होने को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा। मस्क के मुख्यालय में पहुंचने के बावजूद ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है या नहीं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने हवाई अड्डे के पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 57 इलेक्ट्रिक वाहनों को तैनात किया। जल्द ही ऐसे और वाहनों को परिचालन में लाया जाएगा। डायल ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। एक बयान के अनुसार डायल ने ईवी को अपनाने की शुरुआत की। इसका लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से अपने सभी डीजल और पेट्रोल वाहनों को बदलने का है। डायल ने कहा, हमने पहले चरण में अपने एयर साइड और लैंड साइड प्रबंधन के लिए 64 ईवी का ऑर्डर दिया। उसे इनमें से 57 ईवी मिले हैं जिन्हें एयर साइड और लैंडस्लाइड पर तैनात किया है। 7 और ईवी जल्द ही तैनात किए जाएंगे। 57 इलेक्ट्रिक वाहनों में से 21 को एयर साइड पर तैनात किया जा रहा है। हवाई अड्डे की परिचालक ने इस साल जून में हरित परिवहन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य इस कार्यक्रम के जरिए हरित परिवहन की ओर बदलाव करना है। दूर संचार विभाग ने दूर संचार विधेयक के मसौदे के कुछ प्रावधानों को लेकर नियामक ट्राई की आपत्तियों पर गौर किया है और नियामक को सशक्त बनाने से संबंधित प्रावधानों पर सरकार बाद में विचार कर सकती है। दूर संचार विभाग से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। दरअसल विधेयक के प्रारूप के कुछ प्रावधानों से भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण को अपने अधिकारों में कमी आने की आशंका सता रही है। उसने इस बारे में सरकार से अपनी आपत्तियां भी जताई। इस बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि इन आशंकाओं के बारे में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई है और सभी बकाया मुद्दों का समाधान निकाला जा चुका है। सूत्रों ने कहा कि ट्राई और दूरसंचार विभाग के बीच इस मसले पर अब कोई मतभेद नहीं रह गया। दूरसंचार विभाग की सोच ये है कि अमेरिकी संघीय संचार आयोग या ब्रिटिश संचार नियामक ऑफकॉम की तर्ज पर ट्राई को भी सशक्त बनाने के लिए जरूरी प्रावधान 3-4 साल बाद अलग से किए जा सकते हैं। फिलहाल सभी विवादास्पद प्रावधानों को विधेयक के मसौदे से हटाने के बारे में विचार किया जा रहा है। रियलिटी फर्म M3M इंडिया गुरुग्राम में एक नई खुदरा संपत्ति परियोजना विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि उसने 150 मीटर चौड़े द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुग्राम के सेक्टर 113 में एक खुदरा परियोजना M3M कैपिटल वॉक शुरू की है। इस परियोजना में विभिन्न आकारों की 1047 इकाइयां होंगी जो 100 से 3000 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में होंगी। इस परियोजना से 2000 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। M3M इंडिया के निदेशक पंकज बंसल ने कहा कि कंपनी 60 लाख वर्ग फुट खुदरा क्षेत्र का पोर्टफोलियो बनाने के लिए निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि नई परियोजना में बिक्री के लिए 10 लाख वर्ग फुट की जगह होगी। एकीकृत कंटेनर लॉजिस्टिक कंपनी एपी मोलर मर्क ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के दादरी में अपना नया गोदाम तैयार किया है जिसका संचालन पूरी तरह महिलाएं करेंगी। इस गोदाम की महिला कर्मचारियों की संख्या 84 है और इन्हें आसपास के गांवों से काम पर रखा गया। ये 1 लाख वर्ग फुट का गोदाम कंपनी के कंटेनर फ्रेट स्टेशन परिसर के भीतर स्थित है। मर्क्स दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक विकास अग्रवाल ने कहा, देश भर में अपने गोदामों का विस्तार करते हुए हम पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं के लिए अवसर पैदा करना चाहते हैं। साल 2021 की जनगणना के अनुसार दादरी में कुल आबादी के मुकाबले सिर्फ 6% कामकाजी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी ने इस स्थिति को बदलने के लिए काम करने का फैसला किया। नागर विमानन महानिदेशालय ने गोवा के मोपा में जल्द वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस जारी कर दिया। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएमआर समूह द्वारा संचालित होने वाले मोपा हवाई अड्डे के लिए 26 अक्टूबर को लाइसेंस जारी किया गया था। ये गोवा का दूसरा हवाई अड्डा होगा। यहाँ पहले से ही मोर मुगाओ शहर के डाबोलिम में एक हवाई अड्डा है। नया हवाई अड्डा गोवा के उत्तरी भाग में पंजिम से लगभग 35 किलोमीटर दूर होगा और इसका निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। इसके अलावा डीजीसीए ने विमानन कंपनी इंडिगो को बोइंग विमानों को तुर्की एयरलाइन से 6 महीने तक के लिए पट्टे पर देने की अनुमति दे दी है। सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए कहा कि महानिदेशालय ने लंबी अवधि के लिए बोइंग विमानों को पट्टे पर लेने की कंपनी के अनुरोध को ठुकरा दिया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।